ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के अरहद भक्ति भावना की, आज के पावन पवित्र भावना का नाम है अरहद भक्ति भावना। अरहद भक्ति भावना कैसे होती है, कैसे होना चाहिए, आज के इस संदर्भ में हम सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरहद भक्ति का अर्थ होता है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन में सम्यक्त्व धारण किया, सम्यक ज्ञान का अनुसरण किया और संयमधारी बन करके संपूर्ण परिग्रह और ममत्व से दूर होकर त्याग तपस्या के माध्यम से कर्मों पर विजय प्राप्त किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया और अरहंत बन गए। अरहंत पद को प्राप्त हो गए। ऐसे अरहंत भगवान की भक्ति करना अरहद भक्ति कहलाती है। अरहंत कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि केवल तीर्थंकर भगवान ही इसमें शामिल हैं। तीर्थंकरों की भक्ति ही अरहद भक्ति ऐसा नहीं समझना। अरहद भक्ति का अर्थ होता है जिनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अरहंत पद को प्राप्त करके अरिहंत बन गए, उनकी भक्ति करना अरहद भक्ति है। भूतकाल में तीर्थंकर तो अनंत हुए ही हैं, भविष्यत काल में अनंत तीर्थंकर होंगे ही, परंतु प्रत्येक अरहंत भगवान के, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के तीर्थ में अरहंत असंख्य असंख्य होते हैं। उन अरहंतों की भक्ति आप लोग यहाँ विराजमान होकर समोशरण को साक्षात प्रत्यक्ष देखते हुए अरहत भक्ति कर रहे हैं। यह अरहत भक्ति बड़ी विशाल भावना से होना चाहिए, बड़ी पवित्र भावना के माध्यम से होना चाहिए। भावनाओं की पवित्रता अति महत्वपूर्ण होती है। भावनाओं में पवित्रता अगर नहीं रहेगी तो अरहत भक्ति फलदायी नहीं होती। भावनाओं की पवित्रता का तात्पर्य भक्ति का शुद्धिकरण, भक्ति की निर्मलता, भक्ति मंगल हो, कामना से मुक्त हो। भक्ति के पीछे कामना नहीं होना। कौन सी कामना नहीं होना, ये तो बार बार बताया गया कि कोई भी धर्मानुष्ठान करते समय किस कामना से मुक्त हमें रहना चाहिए। भौतिक कामना से मुक्त होकर के यदि आप अरहंत भक्ति करते हैं, अरहत भक्ति कहो अरिहंत भक्ति कहो एक ही बात है। अरहत भक्ति यदि कामना से मुक्त होकर के करते हैं तो वह पवित्र भक्ति कहलाती है। उसी भक्ति को सफल माना गया है। एक अरहंत भगवान का भक्त यदि भक्ति कर रहा है तो वह अपना लक्ष्य अपना ध्येय बना करके अरहंत के चरणों में उपस्थित होता है और कहता है हाथ जोड़ करके, हे भगवन, मैं अनादिकाल से संसार में भटकता रहा, उसका मूल कारण यही है कि मैंने आपकी भक्ति निर्दोष भक्ति नहीं की। कामना को छोड़ करके हमने कभी आपकी आराधना नहीं की, आपकी अर्चना नहीं की, आपकी पूजा नहीं की, आपकी भक्ति नहीं की, आपका ध्यान नहीं किया, आपका जाप नहीं दिया। फलस्वरूप मेरी भक्ति मलिन होने से, मलिन भक्ति के कारण से मैं 84 लाख योनि में ही भटकता रहा, क्योंकि आत्मकल्याण मेरा लक्ष्य नहीं रहा। आत्मा संसार में भटक रहा है, इस संसार के 84 लाख योनियों से मुक्त करने का लक्ष्य मेरा नहीं बना। फलस्वरूप 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हुआ और आज भी मैं संसार में हूँ और आप परमात्मा बन गए, सिद्ध शिला पर पहुँच गए। अब मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा। जो अपराध बार बार हुआ है वो पुनः पुनः मैं नहीं करूँगा, उसको रोकूँगा और आपकी भक्ति में ऐसा अब डूब करके मैं अपने आत्मकल्याण के उद्देश्य से कर्मों के संवर के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, मोक्ष वैभव को पाने के लिए, जो आत्मा की निधि है, आत्मा में होता है, आत्मा के लिए प्राप्त होता है, ऐसी निधि को मैं पाने के लिए आपकी भक्ति करता हूँ और यही निर्मल भक्ति है। इस भक्ति भावना में मैं अरहत भक्ति करूँगा, जिस अरहत भक्ति के अंदर तीर्थंकर भगवान भी शामिल हैं और संपूर्ण अरहंत पद को प्राप्त किए हुए वे सारी मंगल आत्माएं, पवित्र आत्माएं, पावन आत्माएं, वे सारे परमात्मा शामिल हैं। मैं उस भक्ति को करता हूं जिस भक्ति के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का मुझे बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने पर मुझे भी सर्वोत्कृष्ट परमात्मा अवस्था को प्राप्त करके मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा। हे भगवन, मैं हाथ जोड़ करके आज निर्दोष भक्ति करता हूँ, मेरे अंदर कोई मलिनता न बचे, ऐसी कृपा करो। मेरे सारी मन की मलिनता को आप दूर करो, मलिनता दूर हो जाएगी तो मन की पवित्रता बढ़ेगी, आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, मन और आत्मा की पवित्रता बढ़ जाए तो काया की पवित्रता स्वयमेव बढ़ जाती है। आत्मा की पवित्रता और मन की पवित्रता, यही मुख्य दो पवित्रता होती हैं। इन दोनों पवित्रताओं के कारण से शरीर स्वयं पवित्र माना जाता है। मुनि महाराज त्याग तपस्या करते हुए सदा ही अपने मन को और अपनी आत्मा को निर्मल रखते हैं। मन के अंदर कोई भी भौतिक कामना, सुख संपदा की इच्छा नहीं रखते। जड़ वस्तु की सुख को वे पाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता लग गया है कि जड़ वस्तु में सुख नहीं, आत्मा की चेतन संपदा भीतर पड़ी हुई है। उस चेतन संपदा के अंदर डूबकर उसका सुख का आस्वादन लेना है। ये सोच करके एक दिगंबर मुनि महाराज निर्दोष आत्म आराधना करते हैं। मुनि बनने के बाद भी हो सकता है मन में मलिनता उत्पन्न हो जाए, निदान बंद हो जाए, आत्मा सशल्य बन जाए और शल्य के दुखों को भोगने के लिए परगति में भ्रमण करने के लिए बहुत दूर तक चला जाए, ये भी संभव है। किंतु मुनि महाराज समल समल करके चलने वाले, सतत अरहंत भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने वाले कभी भटक नहीं सकते। अज्ञानता के कारण से जीव भटकता है। देखा देखी यदि त्याग तपस्या को ग्रहण किया है या अन्य कोई भौतिक वांछा से त्याग तपस्या स्वीकार किया है तो जीवन भटकना संभव है, लेकिन ऐसे मुनि महाराज कभी नहीं भटकते जो अपने जीवन की पूर्ण सफलता के लिए संपूर्ण अपने जीवन को समर्पित किए हुए होते हैं। वे दिगंबर मुनि महाराज सम्यक ज्ञानी होते हैं। वे दिगंबर मुनि महाराज मन की मलिनता से सदा दूर रहते हैं, आत्मा की अपवित्रता से सदा दूर रहते हैं। वे धन्य हैं, वे वंदनीय हैं, वे पूजनीय हैं। इस संसार में जितने भी दिगंबर मुनि हुए हैं, वे जो मन और आत्मा से निर्मल थे, समस्त कामनाओं से मुक्त थे, वे ही पूजनीय दशा को प्राप्त थे। और भविष्य में ऐसे जितने भी मुनि महाराज होने वाले हैं, वे ही वंदनीय पूजनीय अवस्था को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, अरहंत भक्ति में आप तल्लीन हैं, अरहत भक्ति कर रहे हैं। इस अरहत भक्ति के अंदर किस प्रकार से आपको अपनी मन की परिस्थिति को परिशीलन करके मोक्ष मार्ग पर इसको ले जाना है, ये चिंतन मनन अवश्य करते हुए आराधना करना है। आकाश में पानी बरसता है तो वह पानी सामुदायिक रूप से नहीं बरसता, बूंद बूंद के रूप में बरसता है। एक बूंद पानी जब टपकता है तो स्वतंत्र होकर के टपकता है, वह अपने आप में ससीम होता है, सीमा सहित होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, अपने अस्तित्व को इतना छोटा रखता है कि उस छोटे अस्तित्व को पा करके वह बूंद विचार करता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, मैं कैसे असीम का दर्शन करूं। जितने भी बूंदें गिरती हैं ऊपर से, सारी की सारी बूंदें स्वतंत्र होती हैं, गिरने के पश्चात उनमें एकता होती है, बूंद बूंद मिलकर के फिर बहना शुरू होता है, एक शक्ति आती है। स्वतंत्र बूंद धरती पर गिर जाती है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, वह बूंद धरती में समा जाती है। अस्तित्व मिटने के कारण से वह सागर तक नहीं पहुंच पाती, परंतु बूंद के लिए ये अपेक्षा है, ये इच्छा है, ये वांछा है कि मैं सागर का दर्शन करूं। सागर किस प्रकार होता है, वहां पर जाकर के मैं विलीन हो जाऊं। इस प्रकार बूंद यदि इच्छा रखती है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धरती में न समा जाऊं और मैं सागर तक पहुंचूं, इसके लिए बूंद को क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखो, सागर में जाकर शरण लेने से पहले अपने आसपास में जो बूंदे हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। मोक्ष जाने से पहले जो मोक्ष गए नहीं, मोक्ष का दर्शन नहीं हुआ है, मोक्ष पाने के मार्ग पर आरूढ़ होने के बाद, रत्नत्रयधारी बनने के बाद जिनको आनंद आ रहा है, मुझे मोक्ष मिलने वाला है क्योंकि मेरे पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, और उसको जीवन में धारण करने से आत्मा में एक पवित्रता बढ़ गई है, शुद्धता बढ़ गई है और शुद्धात्मानुभूति हो रही है। इसी आनंद के फल स्वरूप मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये आनंद ही उसका साक्षात प्रमाण है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। मुनि महाराज, मोक्ष गए हुए नहीं होते, होते नहीं होते। अरहंत भगवान भी मोक्ष प्राप्त किए हुए आत्मा नहीं है, अभी मनुष्य गति में है। मनुष्य गति संसार है, संसार की गति है, मुक्त गति तो नहीं है। अरहंत भगवान संसारी हैं। शेष परमेष्टि तीन, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये भी संसारी हैं, परंतु ये संपूर्ण शरण को प्राप्त हुई। किसको शरण में गए हैं? जो आसपास में हैं, अपने आसपास में जो सत्संग के कारणीभूत वातावरण हैं, उसके शरण में हैं। मुनि महाराज अरहंत भगवान के शरण में हैं, मुनि महाराज अपने गुरु के शरण में हैं। अगर मुनि महाराज स्वतंत्र हो जाए तो अरहंत भगवान से भी स्वतंत्र और गुरु महाराज से भी स्वतंत्र हो करके अपने अस्तित्व को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो क्या होगा? धरती में समा सकते हैं परंतु ऊर्ध्वगमन नहीं पा सकते, मुक्ति का दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान का दर्शन नहीं होगा। सिद्ध परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। एक मुनि महाराज को भी शरण लेना पड़ता है। मुनि महाराज भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, चत्तारी मंगल दंडक भी पढ़ते हैं। चत्तारी मंगलम, मेरे लिए चार ही मंगल है। मुनि महाराज पढ़ते हैं कि नहीं? इस बात, इस दंडक को पढ़ते हैं। मुनि महाराज भी कहते हैं चत्तारी मंगलम, चार ही मंगल हैं मेरे लिए। अरहंत भगवान मंगल हैं मेरे लिए, सिद्ध भगवान मंगल हैं मेरे लिए, जितने भी साधुगण हैं, रत्नत्रयधारी साधुगण जो आत्मा की उपासना में लगे हैं और आत्म तत्व के प्रति समर्पित हैं, वे सारे के सारे साधु परमेष्टि मंगल हैं। और मैं इनके मंगल की शरण में रहता हूँ। एक मुनि महाराज भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व न रखते हुए सत्संग के शरण में रहते हैं। आचार्य परमेष्टि के शरण में रहना, उपाध्याय परमेष्टि के शरण में रहना और साधु परमेष्टि के सत्संग में रहना, शरण में रहना, ये साधु परमेष्टि भी करते हैं तो गृहस्थों को क्या करना चाहिए? विचार करिए। सुन रहे हैं सभी? क्या नींद आ रही है? जब साधु परमेष्टि ही ऐसा करते हैं अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए और ससीम आत्मा को असीम बनाने के लिए, असीम का दर्शन करने के लिए, मोक्ष का दर्शन करने के लिए, अनंत सुख संपदा का दर्शन करने के लिए, जब एक मुनि महाराज भी चार मंगलों के शरण में जाते हैं तो श्रावक को किसके शरण में जाना चाहिए? कोई दूसरा शरण है क्या? नहीं है। क्यों? आपके कुल देवता तो शरण है, आप रोज जाते हैं। हमारी कुल परंपरा की देवता है, कुल देवता है कह करके शरण में तो जाते ही होंगे ना? नहीं जाते? उनके शरण में नहीं रहते? आपको यह भी पता नहीं है अभी कि कुल देवता, सच्चे कुल देवता हमारे कौन हैं? बोलिए, रागी देव हमारे सच्चे कुल देवता हो सकते हैं या वीतरागी अरहंत परमात्मा हमारे सच्चे कुल देवता हैं? तो फिर कब से संगति बना लिया? रागी की संगति से निर्वाण की प्राप्ति, आत्म कल्याण की उपलब्धि जीवात्मा को नहीं हो सकती। किसके शरण में रहना है? छोड़ो आकांक्षाएं, इन्हीं कामनाओं को, कामनाओं की पूर्ति के लिए हमने रागी देवताओं की शरण ली और नुकसान पाया, दुख पाया, उससे कुछ हुआ नहीं पर भयभीत होकर के भय भक्ति किया। भयपूर्ण भक्ति करना भय भक्ति है ना? भय भक्ति, जिस भक्ति के साथ भय जुड़ा हुआ हो वो भक्ति निर्दोष नहीं हो सकती। अरहंत भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो भय उत्पन्न होता है क्या? देख लो, डर लगता है? आप 16 दिन तक यहाँ पर भक्ति करेंगे, एक भी दिन अरहंत भगवान की भक्ति करते समय डर लगेगा? लेकिन रागी देवता की भक्ति लोग क्यों करते हैं कुल देवता समझकर? डर के वजह से, क्योंकि ये समझ रखा है ये कुल देवता हमारे धन संपत्ति परिवार के मालिक हैं, ये प्रसन्न रहेंगे तो हमारी धन संपत्ति कुल परिवार बचेगा, नहीं तो ये रुष्ट तुष्ट हो जाएंगे तो हम मिट जाएंगे। ये अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। इसी कारण से रागी देवता अपेक्षित हो गए। हम अज्ञानी थे इसलिए रागी देवता को कुल देवता बना लिया। और कितना महत्व घटा दिया अपने जीवन के धर्म का, अपने जीवन के पवित्र धर्म का महत्व हमने कितना घटाया, बहुत घट गया। वीतरागी भगवान सर्वोपरि थे, जिनकी भक्ति निर्दोष करने से, भय छोड़कर उनकी भक्ति करने से भय तो होता ही नहीं है, उनकी भक्ति केवल निष्काम परिणामों से करने से, निष्काम भावों से करने से सारी सुख संपदाएं, भौतिक सुख संपदाएं भी और मोक्ष की सुख संपदा भी प्राप्त होती है क्या नहीं? इस पर आपको विश्वास है क्या नहीं? इस पर आपको श्रद्धा उत्पन्न होती है क्या नहीं? यदि इस पर होती है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको हटाइए। डरने की जरूरत नहीं। रागी देव कषाय उत्पत्ति में कारणीभूत होते हैं। रागी देव को देखने से डर तो लगता है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि होने के कारण उसको देखते ही भय उत्पन्न होता है। पहले तो भय उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होते ही आत्मा में एक तरह से मलिनता उत्पन्न होती है, निर्मलता मिट जाती है, विशुद्धि समाप्त होती है। जब आत्मा की विशुद्धि समाप्त होती है भय के कारण से, तो पुण्य का बंद कहाँ से होगा? आप समझिए, विचार करिए। देव को देखते ही मन में अगर भय उत्पन्न हुआ, कंपन हुआ, तो पुण्य बंद हुआ क्या पाप बंद हुआ? तो फिर पुण्य बंद नहीं हुआ, और पाप बंद हुआ तो पाप बंद का फल क्या है? भौतिक सुख, परमार्थ सुख, या भौतिक दुख और परमार्थ दुख? दोनों दोनों ही दुख हैं। भौतिक दुख भी है, ये भी नहीं मिला, और डरने से परमार्थ सुख भी नहीं मिला। दोनों सुख नहीं मिले, उल्टा दोनों जगह हमारे लिए दुख ही दुख मिला। इसलिए किसको कुल देवता बनाना? कुल देवता हमारा अनादिकाल से कौन रहा है, ये विचार करना आवश्यक। स्वर्ग में रहने वाले सारे देवता अरहंत प्रतिमा की पूजा करते हैं, और अरहंत प्रतिमा को ही अपने स्वर्गीय विमान के कुल देवता समझ करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और ये भावना भाते हैं कि अरहंत के समान ही हम भी बने। समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरह से समझ के ले लो, और थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन कर लोगे तो बेड़ा पार है। अज्ञानता के कारण से हमने कुछ भी किया होगा वो दूसरी बात है, परंतु ज्ञान आने के पश्चात कभी विकल्पित नहीं होना, कोई संकोच नहीं करना, कोई किसी भी प्रकार का भय मन में नहीं रखना। अरहंत भगवान के सही निर्दोष भक्ति करने से और अरहंत भगवान का भक्त बनने से सारे देवता अपने आगे पीछे घूमने लगते हैं, और देवताओं को ही कुल देवता हमने बना लिया तो सारे देवता पीछे हट जाते हैं, कोई सहायता करने के लिए नहीं आते। बोलो, अभी तक जितने भी श्रावकों के ऊपर संकट आए थे, शास्त्रों में उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं, कितने सारे। सीता के ऊपर कष्ट आया, सीता सम्यक दृष्टि थी। यमपाल चांडाल के ऊपर कष्ट आया, वो तो चांडाल था, सम्यक दृष्टि था। ये सम्यक दृष्टि सारे के सारे गृहस्थ, श्राविका और श्रावक इत्यादि जो इतिहास में हुई हैं, वे सारे सम्यक दृष्टि थे। उनके कुल देवता कौन थे, विचार करो। वो किसके शरण में थे? सीता को कष्ट आया तो नमोकार मंत्र की शरण लिया कि कुल देवता के शरण में गई? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में रहने वाले पंच परमिष्टि हैं, और ये पांच परमिष्टि, इसमें से तीन गुरु पद पर रहने वाले गुरु परमिष्टि हैं, और दो भगवान पर पद पर होने से वे हमारे देव पर पद पर, पवित्र देव पद पर प्रतिष्ठित हैं। अरिहंत भगवान सच्चे देव है, वीतरागी देव हैं। सच्चे हैं क्या नकली हैं? सच्चे हैं, वीतरागी हैं। वीतरागी देव के शरण में जाने पर जितने भी रागी देव हैं वे आपके भक्त बन जाएंगे, सेवा करेंगे आपकी। परंतु रागी देव को ही यदि हमने कुल देवता बना लिया तो सारे पीछे हट जाएंगे, उनकी आराधना में डूबेंगे, तो हमारा मार्ग बिगड़ जाएगा, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान का मिथ्या ज्ञान में कन्वर्ट होगा। तो कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। संकल्प करो आज के दिन ही, मेरे सच्चे कुल देवता वीतरागी भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं। स्वर्ग में सारे के सारे रागी देव अरहंत भगवान को कुल देवता मान करके पूजा करते हैं, तो रागी देव कुल देवता बन करके कब से और कहां से आ गए आपके यहां आपके घर में? कब से मालूम नहीं महाराज, पहले से था, हम करते चले आ रहे हैं। पहले से था, हमारे माँ बाप भी वही किए थे, वो भी अज्ञानी थे, और उससे पहले उनके माँ बाप भी थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, रागी देवता को कुल देवता मान करके चले आ रहे हैं सभी लोग। तो यह लोक मूर्ता कहलाती है। लोक में जो चला आ रहा विपरीत विषय होता है उसका अनुसरण करना लोक मूर्ता की कोटि में आता है, और लोक मूर्ता सम्यक्तो का दोष है। तीन दोष हैं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, तीन प्रकार की होती है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और कौन सा पाखंडी मूर्ता, ही गुरु मूर्ता है। लोक मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। वीतरागी देव को देव समझना ये सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। वीतरागी देव को देव समझना यह समीचीनता है, और रागी देव को देव समझना ये देव मूर्ता है, और रागी गुरु को गुरु समझना ये गुरु मूर्ता कहो या पाखंडी मूर्ता कहो, दो नाम हैं उसके। पाखंडी यानी पाप को जो खंडित नहीं कर सकता, पाप कर्म को खंडित करने की क्षमता जिस गुरु के पास नहीं है उस गुरु का नाम पाखंडी। पाप को नाश करना चाहिए, पाप को नष्ट करना चाहिए, पाप का खंडन करना चाहिए, और पुण्य को बढ़ाना चाहिए, पुण्य को भी विसर्जित करके मोक्ष जाना चाहिए। तो पुण्य और पाप को विसर्जन करने का लक्ष्य बना करके जो पाप को खंडित करने में लगे हुए गुरु होते हैं उनको तो सच्चे गुरु कहते हैं, और जिनको पाप कर्म को खंडित करने की योग्यता पात्रता नहीं है वे पाखंडी मूर्ता में शामिल पाखंडी गुरु कहलाते हैं। पाखंडी का मतलब नकली भी होता है, और पाखंडी का मतलब पाप को जो नष्ट नहीं कर सकते वो गुरु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्न जिस गुरु के पास हों वे गुरु निरंतर पाप का खंडन करने वाले होते हैं। आत्मा अनादिकाल से पाप कर्मों से बद्ध है, सभी आत्माएं पाप कर्मों से बंधी हुई हैं। आप भी पाप कर्म से बंधे हुए हैं कि नहीं? हाँ, बंधे हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? चार बजे उठते हैं, थोड़ी सी ऊंग आती है, सुनते रहते हैं, इधर भी रहता है उधर भी रहता है, कुछ थाली में मन, कुछ नींद में मन, कुछ उपदेश में मन, उलझ रहा है। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हाँ, सच्चे गुरु कैसे होते हैं? रत्नत्रय के धारी होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उपासना निरंतर करते हैं, और रत्नत्रय होने के कारण से ही उनकी आत्मा मंगल आत्मा कहलाती है, उनकी आत्मा उत्तम आत्मा कहलाती है, उनकी आत्मा समस्त जगत को, भव्य जीवों को शरण जाने योग्य आत्मा होती है। रत्नत्रय परम पावन पवित्र होता है, उसके शरण में हम सबको जाना है। वो जिसके पास है वे आत्मा मंगल हैं, वे सच्चे गुरु हैं, ये ही पाप का खंडन कर सकते हैं, इसलिए सच्चे गुरु हैं। तो आज विचार करें, हमारे पास देव मूर्ता भी रही, देव मूर्ता भी रही, सच्चे गुरु का भी स्वरूप हम नहीं समझते थे कि क्या किससे सहित होना, रत्नत्रय से या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से किससे सहित होना चाहिए, गुरु को ये भी मालूम नहीं था, बहुत अंधकार था अपने जीवन में। आज सच्चे गुरु का स्वरूप भी समझ में आ रहा है, सच्चे वीतरागी देव का स्वरूप कैसे होते हैं, सच्चे देव, सच्चे देव चार चतुष्टय से युक्त होते हैं और वीतरागी होते हैं, अरहंत कहलाते हैं या तो सिद्ध भगवान कहलाते हैं। इतने सारे तीर्थंकर हो चुके हैं, मोक्ष चले गए हैं, उनमें से एक को तो कुल देवता बना लो, ये क्या चल रहा है, और इससे कल्याण कैसे होगा, और इससे जिसकी आप चाह रखते हैं उसकी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जिसका भय आप रख रहे हैं वो भय रखना व्यर्थ है, वो न हमारी संपत्ति को छीन सकते हैं न दे सकते हैं। हमारे लिए अपनी संपदा, वैभव, धन संपत्ति आदि, ये कोई देव थोड़ी देते हैं। हमारा पुण्य जो कमाया हुआ पूर्व भव का होता है उसके बल पर हमारे लिए संपत्ति मिलती है और स्वयं के पुरुषार्थ से मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? क्या रागी देवता हमारे लिए धन संपत्ति दे सकता है? नहीं दे सकता। यदि देता है, दिया हुआ, तो कितने लोगों को रागी देवताओं ने धन दिया है, लाखों रुपया दिया, एक दिन आए लाख रुपए दिए, एक दिन आए करोड़ दिए। किस दिन, किस तारीख पर डायरी में लिख रखा हो तो बताओ, तारीख किस तारीख को कितना पैसा दिया रागी देव ने? अरहंत देव भी देते नहीं और रागी देव भी देते नहीं, ध्यान रखना, दोनों नहीं देते। परंतु पुण्य देता है, ये सत्य है क्या? नहीं। हमारा कमाया हुआ पुण्य पूर्व भव का जो रहता है वही देता है, ये सत्य है क्या? नहीं। तो इस सत्य पर विश्वास करो कि हमारे पुण्य के वजह से सब कुछ मिलता है। कोई भी देव, बाहरी व्यक्ति की, बाहरी राजा, माता पिता, भाई बहन, परिवार, कोई देव, कोई नहीं दे सकता। हमारे पुण्य के बल पर हमें संपत्ति मिलती है, ये विश्वास करोगे कि दूसरा कोई देता है, दूसरा देता है, दे सकता है, देगा देगा देगा, ऐसा करोगे, इंतजार करोगे? नहीं। सब कुछ ये अंधश्रद्धा समाप्त कर दो, छोड़ो उसको, अज्ञान है वो पूरा। पुण्य कमाओ और समीचीन पुण्य कमाने के लिए परिणामों को निर्मल रखो, कामना मत करो, भौतिक कामना मत करो। और भौतिक कामना अगर मन में नहीं है तो बाहर में भक्ति करने के लिए यदि जा रहे हैं तो अरहत भक्ति करो। आज अरहत भक्ति भावना है, बाहर जाओगे तो किसकी भक्ति करना? देव की भक्ति करना हो तो सच्चे देव की भक्ति, दो ही देव हैं, एक अरहंत देव और एक सिद्ध देव, ये दो ही हमारे लिए कुल देवता हैं जैन परंपरा में। मन में अनेक प्रकार की कामना जगने से, और लोक व्यवहार में हम वही वही देखते हैं, जहां भी देखते हैं वहां रागी देवताओं की उपासना चलती है और कुछ पाने के लिए चलती है, भौतिक सुख संपदा को पाने के लिए चलती है। और वो देव नहीं देता है तो घबराते हैं, उन्होंने छीन लिया ये धारणा बना लेते हैं, और दे देता है तो प्रसन्न होते हैं, देवता बहुत अच्छा है, इस देवता की भक्ति बहुत करनी चाहिए, ऐसे समझ लेते हैं। यही देव मूर्ता है।
पुरुषार्थ पर भरोसा
खुद के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, और पुरुषार्थ सही ढंग से कर नहीं रहे हैं इसलिए भरोसा भी कैसे रख सकते हैं। सही पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं ना। पुरुषार्थ कहाँ करना, सही पुरुषार्थ तो ये है यहाँ पर जो बैठ करके आप अरहत भक्ति कर रहे हैं और निष्काम वृत्ति से कर रहे हैं, ये सही सच्चा पुरुषार्थ है। इस सच्चे पुरुषार्थ से निरंतर पुण्य का बंध हो रहा है और ये पुण्य आपको चक्रवर्ती बनाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यही पुण्य चक्रवर्ती बनाने वाला है, क्योंकि ये निर्दोष पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य है, जो कामना रहित अवस्था में बंध जाती है और वह बंधने के उपरांत वो पुण्य प्रकृति हमारे लिए फलदायी सिद्ध होती है। तो आइए, आपके लिए स्वागत है सच्चे धर्म को, सच्चे देव को और सच्चे गुरु को, सच्चे जिनवानी माता की शरण में जाकर अरहत भक्ति सीखना है। सीखने की कला हम सिखा रहे हैं आपको, कैसी भक्ति करना। हाथ जोड़ो भगवान से, हे भगवान, हमारी कुल देवता कोई रागी नहीं हो सकता। हम देखा देखी लोक व्यवहार में भटक गए थे, उन रागी को ही कुल देवता समझकर हमने स्वीकार किया था। बोलो बोलो, तो रागी देवता कोई कुल देवता समझकर हमने स्वीकार किया था, बोलो। ये हमारी भूल हो गई थी, इससे हमारा पुण्य मिट रहा था, पुण्य नष्ट हो रहा था। अब मुझे शास्त्रानुसार, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, दिगंबर गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है, ऐसे मार्ग पर चलकर सच्चा पुरुषार्थ करते हुए निष्काम अरहत भक्ति ही करेंगे। जो निर्दोष पुण्य का, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, वह पुण्य अरहंत भगवान के सानिध्य में ही होता है, किसी रागी देवता के सानिध्य में पुण्यानुबंधी पुण्य बंध नहीं होता। सही है क्या नहीं? रागी देवता की, देवता को भजते समय पुण्यानुबंधी पुण्य होगा क्या, मलिन पुण्य बंध होगा? क्योंकि राग की पूजा करने से राग बढ़ता है, राग बढ़ने से आत्मा की मलिनता बढ़ती है, आत्मा की मलिनता बढ़ने से पापाश्रय होता है। अपना पुण्य जितना भी पूर्व भव का होता है वह भी पाप के रूप में कन्वर्ट होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। डरो नहीं, भयभीत मत होना। निर्दोष धर्म को यदि जीवन में स्थान दोगे, वो उत्थान ही उत्थान होना है, और आपका दोनों तरह से उत्थान हो, ये आशीर्वाद मैं देना चाहता हूँ, इसलिए उपदेश दे रहा हूँ। आप भौतिक रूप से भी संपन्न हो, चक्रवर्ती बने, मेरी भावना है। चक्रवर्ती पद तक पहुंच जाए, ऐसी मेरी भावना है। यदि चक्रवर्ती नहीं बन पाते हैं तो आपके पुरुषार्थ की कमी कहलाएगी। क्या कमी कहलाएगी? निर्दोष निष्काम भक्ति तो आपने कर लिया, लेकिन उच्चतम विशुद्धि को बढ़ा नहीं पाए, मन को विशुद्धि के चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाए, तो चक्रवर्ती पद कैसे मिलेगा? तो कम से कम एक सेठ साहूकार तो बन पाओगे ना, तो बने, इसमें क्या सकते? वो नहीं बन पाते हैं तो ये तो बनो, और ये नहीं बन पाते हैं तो वो तो बनना ही बनना है, चक्रवर्ती बनना है आपको। हमारा आशीर्वाद है सबको चक्रवर्ती बनना है। बोली से नहीं, बोली से, बोली वाला बोली में तो बन गया, अब अपनी खोली में बनना है। ये जो देह रूपी कुटिया है, खोली है, इस खोली के भीतर आत्मा है, इस आत्मा के भीतर पुण्य है, उस पुण्य के प्रताप से चक्रवर्ती बनना है। और इस पुण्य के प्रताप से जो चक्रवर्ती बनेगा वो उसी भव से मोक्ष जाएगा। जो पुण्यानुबंधी पुण्य को कमा करके चक्रवर्ती बनता है वो उसी भव से मोक्ष जाता है, किंतु जो पापानुबंधी पुण्य कमा करके रागी देवता को कुल मान करके पापानुबंधी पुण्य कमा लेता है, आत्मविशुद्धि को बिगाड़ देता है, सम्यक्त को मलिन करता है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता इत्यादि मूर्ताओं में फंस जाता है, तो पुण्य बिगड़ जाता है पूर्व भव का, पुण्य बिगड़ जाता है पूर्व भव का और पाप बढ़ जाता है। चक्रवर्ती भले ही बन जाए वो, लेकिन वह चक्रवर्ती पद मोक्ष का कारण नहीं बनता। ऐसे कई चक्रवर्ती हुए हैं इतिहास में, जो दो चक्रवर्ती 12 चक्रवर्तियों में से दो चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं, पापानुबंधी पुण्य कमाया। कैसे पुनः कमाया? मुनि बनकर के त्याग तपस्या की, पहले तो रत्नत्रयधारी बने और बाद में विषयों की कामना हो गई, चक्रवर्ती बनने की कामना हो गई, चक्रवर्ती संपदा की कामना हो गई, तो ये भौतिक कामना हो गई। और कामना से चक्रवर्ती पद तो मिलता है, लेकिन वो मोक्ष का कारण नहीं बनता, कालांतर में संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। ऐसे दो चक्रवर्ती हुए हैं, एक चक्रवर्ती शुभम और एक चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, ये दोनों नरक चले गए हैं। नरक क्यों गए? कामना के कारण से। क्या किया था? तप तो निर्दोष कर रहे थे, लेकिन बीच में मन ऐसा भ्रमित हो गया, मन ऐसे उलझन में पड़ गया कि एकाएकी निदान बंद कर लिया, और निदान बंद के माध्यम से उन्होंने संकल्प ले लिया, आज तक मेरी जो त्याग तपस्या है इसका फल यदि कोई मिले तो मुझे चक्रवर्ती पद मिले, उस चक्रवर्ती पद पर जाने के बाद मैं सबके शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबका राजा बनूं, ऐसी कामना की। और कामना करने के फल स्वरूप पुण्य सारा का सारा जो था उनका कमाया हुआ रत्नत्रय के माध्यम से त्याग तपस्या की थी, मेहनत की थी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था, वो पुरुषार्थ सब डूब गया। वो पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट हो गया। और उसका परिणाम क्या निकला? चक्रवर्ती तो बन गए, मरण करके पहला देव बने और देव गति से आकर के शुभम चक्रवर्ती पद पाए, और वो उस पद पर आने के उपरांत देखो सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, नमोकार मंत्र के ऊपर जल पर नमोकार मंत्र लिखा और उस पर पैर रखने के भाव आ गए। ऐसे भाव क्यों हुए? पापानुबंधी पुण्य के फल स्वरूप, क्योंकि वह पापानुबंधी पुण्य कह रहा है मैं खड़ा हूं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप मोक्ष नहीं जा सकते, तीव्र पाप बन करके अब खड़ा हूँ, अब चक्रवर्ती फल का भोग उपभोग तो कर लिया, लेकिन अब आपके परिणाम ठीक नहीं रह पाएंगे। अपने प्राणों को बचाने के लिए उस देवता से कहा, हे देवता तुम जो कहोगे वही करूँगा, लेकिन मेरे प्राण को तुम बचा देना। और देवता बदला लेने के लिए आया था चक्रवर्ती का, वो कौन था देवता मालूम है ना? उसी चक्रवर्ती के घर में रसोईया था, और एक दिन उल्टी सीधी रसोई परोस दिया और चक्रवर्ती को विकल्प हुआ, गुस्सा आया, और उस शुभम चक्रवर्ती ने उस रसोईया को दंड दे करके राज्य से बाहर निकाल दिया था, और वो घूमता घामता चला गया और जा करके वो भी कुसंगति में चला गया, और जा करके खोटी त्याग तपस्या करके देवगति में जन्म लिया, और पूर्व भव का जो चक्रवर्ती के प्रति वैर था उस वैर को बदला लेने के लिए शुभम चक्रवर्ती के पास आया था, और वही देव उनको समुद्र में जहाज में बिठा करके ले गया था, और मरण का भय दिखा करके, देखो तुम मरण से बचना चाहते हो तो नमोकार मंत्र को किस पर लिखो? समुद्र के जल पर लिख दो, और उसके ऊपर पांव रख दो, तुम्हारे प्राणों की मैं रक्षा करूंगा, ऐसा बदला लेने हेतु इस प्रकार के वचन कहा तो उसके मन में, चक्रवर्ती के मन में ये भाव आ गए कि प्राण तो बचना ही चाहिए और ये जो कह रहा है वही करूँगा। ये करूँगा जैसा ही कहा, सम्यक दर्शन समाप्त हो गया, वहाँ सम्यक दर्शन ही छूट गया। और फिर सम्यक दर्शन छूटने के उपरांत बुद्धि और विपरीत बन गई, बुद्धि बिगड़ती चली गई और तीव्र भाव हो गए कि उस नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखें। उसने नमोकार मंत्र लिख दिया और उसके ऊपर पांव रख दिया। जैसे ही पांव रख दिया तो उसका पुण्य सारा का सारा नष्ट हो गया और उस देवता ने उसको खत्म कर दिया, डुबो दिया उसको, और वे सातवें नरक चले गए। कौन? शुभम चक्रवर्ती। ऐसी घटना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की भी है, वे भी नरक गए हैं। शुभम चक्रवर्ती नरक गए हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में हैं, और शेष चक्रवर्ती जो पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से चक्रवर्ती बने थे, वे सारे के सारे स्वर्ग चले गए, ये मोक्ष चले गए, मोक्ष मोक्ष। तो पुण्यानुबंधी पुण्य का फल है मोक्ष। बंधुओं वो पुण्य कमा लो, भौतिक कामना नहीं रखना। कोई रागी देवता से डर करके उनको नहीं भजना, उससे भी पाप पुण्य बिगड़ता है। पापानुबंधी पुण्य के रूप में कन्वर्ट होकर के पुण्यानुबंधी पुण्य समाप्त हो जाता है। तो करेंगे ना ये इतना काम, आपको बचा रहा हूं, भयंकर दुख से बचा रहा हूं, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, वो रास्ता पकड़वा रहा हूं। करेंगे ना संकल्प, एक ही संकल्प करना है। इस संकल्प में कुछ भी नहीं करना है, कामना से कोई धर्म नहीं करना, भौतिक कामना से, और डर करके किसी रागी देवता को भजना नहीं। जो वीतरागी देवता को भजता है उनकी सेवा में देव आते हैं, देव उपसर्ग नहीं करते, देव बचाने आते हैं। सीता को किसने बचाया? देव लोगों ने ही बचाया। सीता सम्यक दृष्टि थी या मिथ्या दृष्टि? किसको भज रहे थे, किसकी भक्ति कर रहे थी? कष्ट के काल में नमोकार मंत्र ही पढ़ रही थी ना, नमो अरहंतानम, अरहद भक्ति कर रही थी। और अरहद भक्ति करते करते ये तक नहीं कहा मन में, हे रागी देवताओं मैं अरहद भक्ति कर रही हूँ और तुम लोग आकर के जरा बचा लेना, संकट में हूँ, संकट आया हुआ मेरे ऊपर। बुलाया? देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता। जो रागी देवता को कुल देवता बनाते हैं ना, वे बुलाना चाहते हैं देवों को, आओ कुल देवता बनो और हमारा सदा हित करते रहो, ये भाव रहते हैं। देवों को बुलाना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि मनुष्य के पास, सम्यक दृष्टि गृहस्थ के पास और सम्यक दृष्टि मुनियों के पास। देवता तो आसपास में घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कोई संकट आया तो दूर कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कैसे संकट दूर किया। ये पुण्यानुबंधी पुण्य के फल स्वरूप होता है ऐसा। देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता। देवता शक्तिशाली हमसे और शरीर की अपेक्षा से शक्तिशाली रहते हैं, कोई कष्ट आने पर हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पुण्यानुबंधी पुण्य अगर नहीं है, हमने निर्दोष अरहंत भक्ति नहीं किया है, पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कमाया नहीं है, पुरुषार्थ नहीं किया था, तो पापानुबंधी पुण्य है। पापानुबंधी पुण्य वाले के पास देवता आते नहीं। चक्रवर्ती का क्या हो गया? पापानुबंधी पुण्य के फल स्वरूप देव तो आ गया, लेकिन देव किस प्रकार का आ गया? नरक भेजने वाला देव आ गया। तो मूल बात क्या है, मूल पॉइंट पकड़ लो कि हमको कहां पर हम भूल कर जाते हैं और कहां पर फेल हो रहे हैं। मूल बात पकड़ में आना चाहिए, कहां हम फेल हैं। हम सही पुण्य कमा नहीं पाते। जो पुण्य सारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में सहयोगी बन करके रक्षा करता है, वह पुण्य हमारे पास नहीं रह पाता, इसलिए संकट आते हैं। कमाओ पुण्य। कौन सा पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य। कैसे कमाना? निष्काम भावना से कमाना, बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। यदि हम भौतिक सुख की कामना करेंगे, मांगेंगे किसी देवता से या मन में इच्छा करेंगे, अरहंत से भी मांगना मना कर दिया, अरहंत भगवान भी देते नहीं और कोई देवता भी देता नहीं है, लेकिन देते हैं ये कहना अज्ञान है, अंधविश्वास है, वो नहीं देते पुण्य देता है, ये विश्वास हमें करना है। साइलेंट नमो अरिहंता नम उसमें शुरू हो गया था, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद हो ही गया होगा उसको भी। मोबाइल अरहंत को भज रहा है, लेकिन मोबाइल वाला किसको भज रहा है ये प्रश्न। मोबाइल ये कह रहा है कि अरहंत को ही भजो, निरंतर अरहंत को भजो, लेकिन मोबाइल वाला समझदार है या नहीं क्या पता। है समझदार? किसको भजते हो? किसका भज गया वो, कहाँ भज गया ये हाँ, किसको भजते हैं आप? श्रेणी का राजा के चेलना रानी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाथ जोड़ो, किसको भजना है? अरिहंत देव को, कुछ भी आ जाए भयभीत नहीं रहना। हमने क्या बता दिया? नवरात्र आए, रात्रि आए चाहे दिन आए, नवरात्र आए, दस रात्रि आए, बारह रात्रि आए, 365 रात्रि आए, डरना नहीं अपने को, निरंतर वीतरागी भगवान को भजो, अपने पुण्य को सुधारो। जो पापानुबंधी पुण्य का बंद हो रहा था आज तक, उसको पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में बांधना शुरू कर दो, ये सच्चा पुरुषार्थ है। और यहाँ आप दृढ़ हो गए तो आपको कुछ भी कोई हिला नहीं सकता, दुनिया तीन लोक की कोई ताकत नहीं जो आपको हिला सके पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में। तीन लोक में किसी की शक्ति काम नहीं करती, पुण्यानुबंधी पुण्य के माध्यम से सारे देवता सेवा में उपस्थित होते हैं, तो क्यों आप रागी देवता के पीछे पड़े हैं? एक आदर्श जैन कुल में जन्म लेकर के आपके जैन कुल को क्यों कलंकित कर रहे हैं? जैन कुल का कलंक है ना, जन्म लेना सार्थक नहीं हुआ। इसमें जन्म लेने वाला तो केवल वीतरागी को ही भजता है, ये सच्चा जैन कहलाता है। कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है जैन कुल को पाने के लिए, और वह गिफ्ट में मिला है, फ्री में मिला है, और फ्री का आप कीमत नहीं समझते। कर्मों ने फ्री में एक बार दे करके परीक्षा की है कि देखते हैं ये क्या करता है, एक बार जैन कुल दे देते हैं तो जैन कुल मिल गया। कर्मों ने गिफ्ट में दे करके परीक्षा कर रहा है वो, और उच्च कुल मिला, और उसका महत्ता हमने घटा दिया, उसकी महिमा समझ नहीं पाए। डरना नहीं किसी से, धर्म एक स्वतंत्र होता है, अपने उपास्य देवता स्वतंत्र हैं, अपने उपास्य गुरु स्वतंत्र हैं, अपने उपास्य शास्त्र स्वतंत्र है, अपना उपास्य सन्मार्ग स्वतंत्र है, अपने उपास्य सारे के सारे जितने भविष्यत काल में होने वाले हैं और भूतकाल में हो चुके हैं, वे निर्दोष आत्माएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता से ही मुक्ति मिलती है, स्वतंत्र हुए बिना सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो पाता, जीवन को स्वतंत्र रखना पड़ता है। आप सम्यक दृष्टि बनेंगे तो किसी के मजबूरी को स्वीकार नहीं करना, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, किसी का विरोध भी नहीं करना, लेकिन किसी का स्वीकार भी नहीं करना। जिसको जिस रास्ते से चलना है चलने दे, उसके तरफ देखना ही नहीं, आप अपने कल्याण के लिए जो करना चाहिए वो करिए। और लोक व्यवहार में आपको रहना है तो उनके सांसारिक क्रियाकलापों में घुल मिल करके रहिए, लेकिन उसके भीतर उनका धर्म उनको स्वतंत्र रहने दो, आपका धर्म आपको स्वतंत्र रहने दो। उनसे कह देना आपका स्वतंत्र है और हमारा भी स्वतंत्र है, संसार हम दोनों का मिल करके है। संसार में हम बंधु हैं, संसार में हम माता पिता हैं, संसार में हम भाई बहन हैं, संसार में हम हमारे सारे के सारे संबंध हैं, ये सब मिल के रहेंगे, आनंद से रहेंगे। लेकिन धर्म एक आस्था की वस्तु होती है, एक श्रद्धा की वस्तु होती है, एक स्वतंत्र आचरण की वस्तु होती है। उसको स्वतंत्रता से ही पालन करके हमारा कल्याण अपने को करना चाहिए। इतना नहीं होता, आप इतने अज्ञानी हैं कि धर्म को किसी के बंधन में रख करके उसको मिटा करके सांसारिक जीवन जी रहे हैं। सांसारिक जीवन जीने के लिए आप धर्म को किस पर चढ़ा रहे हैं? दांव पर चढ़ा रहे हैं, हाँ? जैसे पांडवों ने द्रौपदी को ही चढ़ा करके खेल लिया खेल। धर्म एक पवित्र वस्तु है, धर्म आत्मा का प्राण है, इसको वेदी पर नहीं चढ़ाना। धर्म कल्याणकारी है, निर्दोष धर्म कल्याणकारी है। हम किस किस से भयभीत होकर के क्या क्या करते हैं, धर्म के प्रति अन्याय, अपने आत्म धर्म के प्रति अन्याय करते हैं और हम ही नुकसान उठाते हैं उसका, दुख का फल उसका दुख हम ही उठाते हैं, उसका फल हमको ही मिलता है। थोड़ा सा विवेकपूर्ण जीवन जीने की कला आ जाए तो ये सब अनर्थ से हम बच जाएं। और बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, ये सही रास्ता है, सरल रास्ता और सच्चा रास्ता है। अपने जीवन को सबसे स्वतंत्र कर लो पहले, किससे? अपने परिवार से और सारी दुनिया से। दुनिया में रहने वाले जितने भी संबंध हैं हमारे, केवल सांसारिक संबंध रहेंगे, धर्म से कोई लेन देन नहीं है इनके साथ हमारा। धर्म जो हमारे लिए श्रद्धा का विषय बन चुका है, वही हमारा आत्मा का धर्म है, ऐसा संकल्प लो। सरल है ये, आपको कोई मारने नहीं आता, गला नहीं दबाएगा आकर के ऐसा संकल्प करोगे तो, डरो मत। और यदि दबाएगा तो धर्म मिटेगा नहीं, धर्म तो साथ ही चलेगा। सम्यक्तु के साथ कोई आकर के गला दबा देता है तो सम्यक दृष्टि मर करके देवगति में वैमानिक देव ही बनेगा। क्यों डरते हो इतना मरण से? क्यों डरते हो इन धन संपत्तियों से, आएगा जाएगा, क्या कौन कहेगा? ये विकल्प आता ही क्यों है? आना नहीं चाहिए ना। स्वतंत्र होने के बाद ही धर्म किया जा सकता है। धर्म की भूमिका, प्रथम भूमिका स्वतंत्रता। आप जिस पर श्रद्धान कर चुके हैं वो आपके कुल देवता, जिस गुरु से आप जुड़ गए हैं वो आपके सद्गुरु, अगर सन्मार्ग दिखा रहे हों तो। सन्मार्ग दिखाने वाले सन्मार्ग दिखा रहे हैं तो वो आपके सच्चे गुरु। हृदय में दो को विराजमान करो, आपके जीवन को निर्मल बनाने के लिए, सुख शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक जीवन में देव चाहिए और एक गुरु चाहिए। बहुत सारे गुरुओं की जरूरत नहीं है, सन्मार्ग दिखाने वाले एक गुरु पर्याप्त है। क्योंकि जब आप अटकते हैं जहां आपका अज्ञान रहता है, शंका समाधान के लिए, मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना? गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? सन्मार्ग पाने के लिए। जहां आप अटकते हैं पूछने के लिए एक गुरु चाहिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं। हाँ, यह पता है ना आपको पहले से, और जीवन को शुरू क्यों नहीं करवाया अभी तक? किया है। हाँ, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। एक गुरु बना लो जो सच्चे है और उनसे मार्गदर्शन सदा लेते रहो। जो आत्मा का मार्ग बताते हैं, सच्चा सुख का मार्ग बताते हैं, उनको गुरु बना लो। किसी को भी बना लो, लेकिन उनको बना लो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग आपको बताते हैं और उस पर खड़ा करने का सतत उपदेश देते रहते हैं, उनको गुरु बना लो। बनाएंगे? बनाएंगे? किसको बनाओगे? अरे हमारे ऊपर ही आ रहे हो। हमारा बोझ बढ़ जाएगा फिर, हम किस किस को संभाले? हम उपदेश दे सकते हैं, चलना तो आपको है ना, और यदि भटकने लग जाए तो हमारे पास आना। मन में और पुरुषार्थ में कोई कमी आने लग जाए और मार्ग दिख नहीं रहा है, किस कैसे करूं, क्या करूं, क्या करने से मेरे लिए लाभ है, क्या नुकसान है, इसको पूछने के लिए हमारे पास आ जाना, मैं जरूर मार्गदर्शन करने का कार्य करूंगा।
चौराहे पे खड़े रहेंगे तो
भटकना नहीं, भटकना चौराहे पर खड़े होकर के हम सब कुछ काम करेंगे, हम मार्गदर्शक गुरु आपके लिए रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से आप रत्नत्रय मार्ग पर यदि बढ़ना चाहते हैं तो आचार्य श्री के पास जाइए, वो उस दुनिया के सच्चे गुरु हैं। समय 10:30 बज गया, करेक्ट। अब ज़्यादा समय न लेते हुए सम्यक दर्शन, कुल देवता आदि का जो विषय सुनाया है, आप चिंतन मनन करेंगे और मन को पवित्र बनाएंगे, भय को निकालेंगे और केवल वीतरागी देव की शरण में रहेंगे, और वीतरागी गुरु जैसे मार्गदर्शन करेंगे वैसा ही चलने का आप संकल्प करेंगे, तो आपका कल्याण निश्चित रूप से, जैसा हमारा हो रहा है, जैसे अपने गुरु का हो रहा है, वैसा आपका भी हो सकता है। कोई कठिन बात नहीं, सब सरल है, सब सरल है। मन को सरल बना करके धर्म करोगे तो सब कुछ सरल है, और इतना सरल है, इतना सरल है कि जैन धर्म जैसा सरल धर्म तो दुनिया में कुछ नहीं। इससे क्या ज़्यादा कहूँ, अब जैन धर्म जैसा सरल धर्म दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।